दिन भर 16 मार्च दिन शुक्रवार, सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुई तेलुगु देशम पार्टी, सरकार के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव।
ऑनरेबल मेंबर, आई हैव रिसीव्ड नोटिसेस ऑफ मोशन ऑफ।
केजरीवाल की मजीठिया से माफी पर आप पंजाब में घमासान। और विवेचना में आज कल्याण सिंह के पूर्व प्रधान सचिव से सुनेंगे बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के समय मुख्यमंत्री आवास में क्या हो रहा था।
कुछ लोग चढ़ गए उसमें से, तब डीजीपी आए मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने फायरिंग के लिए परमिशन मांगी। तो कल्याण सिंह ने कहा कि आप क्या कुछ और कर सकते हैं, लाठी चार्ज, टियर गैस शेलिंग करके। कहने लगे नहीं साहब, भीड़ इतनी उग्र हो गई है कि हमें फायरिंग करनी पड़ेगी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से तेलुगुदेशम पार्टी अलग हो गई है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी संसद में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला रही है। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाह रही थी, जिसे देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था। सीरिया के सरकारी सैन्य बल पूर्वी घूटा के दक्षिणी क्षेत्र में भीषण बमबारी कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ताजा हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सकबा और कफर बतना इलाकों में हो रहे इन हमलों में बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। सीरियाई सरकारी सैन्य बलों ने गुरुवार को हमूरिया कस्बे पर नियंत्रण कर लिया था और अब वो इन इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। भारी बमबारी के बीच पिछले कुछ दिनों में करीब 20,000 लोग पूर्वी घूटा छोड़ गए हैं। आज भी बड़ी तादाद में नागरिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इसी बीच कजाकिस्तान में ईरानी और रूसी विदेश मंत्रियों के साथ साझा प्रेसवार्ता में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री मेवलू कावसोग्लू ने कहा है कि पूर्वी घूटा में भीषण तबाही हो रही है। उन्होंने कहा, हिंसा को कम से कम करने की कोशिशों में तेजी आई है, लेकिन आज हुआ संघर्ष विराम उल्लंघन चिंताजनक है। खासकर पूर्वी घूटा के हालात किसी बड़ी तबाही जैसे हैं। आज हमने दोनों विदेश मंत्रियों के साथ पूर्वी घूटा के हालात सुधारने के लिए क्या किया जाए, इस पर चर्चा की है। झारखंड में गाय का मांस ले जाने के नाम पर पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने के एक मामले में स्थानीय अदालत ने 11 गोरक्षकों को हत्या का दोषी करार दिया है। इनमें से 3 को हत्या की साजिश रचने का दोषी भी पाया गया है। दोषी करार दिए गए लोगों में भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ इकाई के मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो भी शामिल हैं। इन्हें 20 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ में अलीमुद्दीन नाम के व्यक्ति की बीते साल जून में हत्या कर दी गई थी। जर्मनी के नए गृहमंत्री हॉर्स्ट ज़ेहोफर ने एक साक्षात्कार में कहा है कि जर्मनी में इस्लाम के लिए जगह नहीं है। बिल्ड अखबार को दिए गए साक्षात्कार में की गई उनकी ये टिप्पणी चांसलर एंगेला मर्केल के नज़रिए के विपरीत है। एंगेला मर्केल जर्मन समाज में मुसलमानों को शामिल करने पर जोर देती रही हैं। माना जा रहा है कि ज़ेहोफर ने ये टिप्पणी इस्लाम विरोधी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए की है। वहीं एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी में इस्लाम के लिए जगह है। उन्होंने कहा,
Die Prägung unseres Landes ist sehr stark durch das Christentum erfolgt und erfolgt auch heute.
हमारे देश पर ईसाइयत का गहरा प्रभाव है, यहूदियों का भी असर है, और इसी बीच जर्मनी में 40 लाख मुसलमान भी रह रहे हैं और वो भी यहाँ अपने धर्म का पालन करते हैं, और ये मुसलमान भी जर्मनी के हैं और उनका धर्म भी जर्मनी का है। हम ऐसा इस्लाम चाहते हैं जो हमारे मूल कानूनों पर आधारित हो और उसका पालन करें। मैंने हमेशा से ये स्पष्ट किया है और मुझे लगता है कि हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म सौहार्द से रह सकें। रूस और ब्रिटेन के बीच राजनयिक संबंध और खराब हो गए हैं। ब्रिटानी विदेश मंत्री ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही पूर्व रूसी डबल एजेंट पर रासायनिक हमले का आदेश दिया होगा। इसकी प्रतिक्रिया में रूस ने कहा है कि पूर्व जासूस को जहर दिए जाने के मामले में राष्ट्रपति पुतिन का किसी भी तरह नाम नहीं लिया जाना चाहिए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की दूसरी सभा दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। केंद्र सरकार अपने कार्यकाल का पहला अविश्वास प्रस्ताव झेलने के संकट का सामना कर रही है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने से नाराज वहां की सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है और केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी ऐलान किया है। हालांकि आज ये प्रस्ताव लाने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नहीं दी, लेकिन सोमवार को फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश होगी। 16 सांसदों वाली टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव का कांग्रेस और राजद ने भी समर्थन का ऐलान किया है। गुरप्रीत कौर की ये रिपोर्ट सुनिए।
ये नारे टीडीपी के सांसद आज संसद भवन परिसर में लगा रहे थे। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने आज एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया। पार्टी पोलित ब्यूरो की आज सुबह अमरावती में हुई बैठक में आम राय से ये फैसला लिया गया। पार्टी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के बाद ये बड़ा कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा,
मैं ఎందుకు ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము ఆలోచించిన తర్వాత కొంతమంది డ్రామాలు ఆడుతున్నారు మేము కూడా
हमने एनडीए छोड़ दिया है। मैंने ये फैसला अपने लिए नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के लिए लिया है। 4 साल तक मैंने सभी तरह की कोशिशें की, 29 बार दिल्ली गया, उनसे बार बार कहा। यह केंद्र का आखिरी बजट था, लेकिन इसमें आंध्र की अनदेखी की गई। हमें अपने मंत्रियों को मंत्रिमंडल से वापस लेना पड़ा।
ये थे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के शब्द। केंद्र सरकार से नाराज टीडीपी ने उसके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी फैसला किया है। इससे पहले बात चल रही थी कि वाईएसआर कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आएगी और टीडीपी उसका समर्थन करेगी, लेकिन अब टीडीपी खुद प्रस्ताव लाने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने लोकसभा में नोटिस दिया है, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि सदन व्यवस्थित नहीं होने से आगे की कार्रवाई आज संभव नहीं है। पार्टी अब सोमवार को प्रस्ताव लाएगी।
सम्माननीय सदस्यों, मुझे मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव के 2 नोटिस मिले हैं। इन नोटिस को सदन के सामने पेश करना मेरा दायित्व है, लेकिन सदन जब तक व्यवस्थित नहीं होगा तो मैं 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी।
ये थे लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन के शब्द। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है चुनी हुई संसद का मंत्री परिषद में विश्वास खत्म हो गया है। लोकसभा में कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अगर 50 सदस्य इसके पक्ष में हैं तो स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान की तारीख तय करती है। खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने टीडीपी पर पलटवार करते हुए कहा कि टीडीपी आंध्र प्रदेश में मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए अपनी खोई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए ये पैंतरा अपनाया है। वहीं कांग्रेस और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने टीडीपी के फैसले का स्वागत किया है। कई जानकारों का मानना है कि ये विश्वास प्रस्ताव भले ही मोदी सरकार को अस्थिर न कर पाए, लेकिन भाजपा को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में इसका नुकसान हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन कहती हैं,
बीजेपी का कोई प्रेजेंस या बहुत ही कम प्रेजेंस है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे अगर बीजेपी को अपना पैर जमाना है तो कोई अलाय की जरूरत है। और इस बात का भी संकेत है कि जो घटक दल है प्रॉबेबली ये महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी 2014 और उसके बाद रही।
हाल के उपचुनावों में हार के बाद भाजपा के लिए 2 दिन में ये दूसरा झटका है। गुरप्रीत कौर, बीबीसी दिल्ली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानहानि के एक मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांग ली है, लेकिन इसका पार्टी की पंजाब इकाई ने जबरदस्त विरोध किया है। पार्टी के सांसद और पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान और उपाध्यक्ष अमन अरोड़ा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब आप के विधायक और नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खेरा ने कहा,
असी हजार बार कहने कि विक्रम मजीठिया ड्रग्स का तस्कर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिहड़े बोर्ड
खैरा कह रहे थे कि हमने हजार बार कहा है कि विक्रम मजीठिया ड्रग्स के तस्कर हैं और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन वॉलंटियर्स को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने जोखिम उठाते हुए उस वक्त की सरकार के सामने निकले और वोट लाए। हमें ये महसूस हुआ कि चलिए केजरीवाल साहब ने हमें नहीं पूछा, लेकिन उन हजारों लोगों से तो पूछना चाहिए था जो उनके लिए वोट लेकर आए। ये थे पंजाब के नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा के शब्द। दिल्ली में भी इसे लेकर अरविंद केजरीवाल निशाने पर लिए जा रहे हैं। पार्टी से नाराज चल रहे नेता कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा है कि 2013, 14 और 15 के चुनाव प्रचार के दौरान उन पर जो मामले दर्ज हुए थे उनकी सुनवाई के लिए उन्हें अब भी अपने कवि सम्मेलन छोड़कर जाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें पार्टी की ओर से कोई कानूनी मदद नहीं मिलती। अब से थोड़ी देर पहले मैंने चंडीगढ़ में बीबीसी पंजाबी के सहयोगी अरविंद छाबड़ा से संपर्क किया और पूछा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या।
देखिए, मजीठिया जो उस समय पंजाब के मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे अरविंद केजरीवाल और अन्य आप लीडर्स का। ये कहना था कि उनका जो ड्रग्स पंजाब में बहुत बड़ी समस्या थी उसकी तस्करी में हाथ है। जो चुनाव हुए पिछले साल उसमें भी बहुत सारे इस तरह की बातें की गई, तो उसको लेकर विक्रम मजीठिया ने डेफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा दायर किया था जो चल रहा था अदालत में। उसमें अचानक से कल अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है कि जो मैंने आरोप लगाए थे वो गलत हैं, मैं सारे अपने आरोप जो है वापस लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये इससे यहाँ पर जो है एक तरह के संकट की स्थिति उस समय पंजाब आम आदमी पार्टी में हो गई, क्योंकि इनका ये कहना था कि ये जो आरोप लगाए हैं वो उसके बिल्कुल साथ हैं, अभी भी समर्थन करते हैं इन आरोपों का। ना केवल इतना, उनका ये भी था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात तक नहीं की माफी मांगने से पहले।
जी जी, ऐसा आपकी पंजाब इकाई का कहना था। लेकिन आज दिन भर जो घटनाक्रम हुए उसे देखते हुए भविष्य में ये संकट आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि पंजाब में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, कितना बड़ा संकट बन सकता है?
जी देखिए, आज दिन भर इनकी मीटिंग चली। हालांकि इनका जो आम आदमी पार्टी पंजाब का जो मीटिंग का ओरिजिनल प्लान था कि एक साल हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को, उस पर चार्जशीट बना के बैठे थे, उस पर डिस्कशन होने वाली थी, लेकिन जो सारा एजेंडा वो बदल गया उस वक्त जब ये पता लगा कि भगवंत मान ने जो है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से एक तरह का संकट सा छा गया आम आदमी पार्टी पंजाब के ऊपर। इस तरह की चर्चा चल रही कि शायद अलग हो जाएंगे आम आदमी पार्टी जो पंजाब है वो सेंट्रल से, और इसी तरह की आवाजें उठी भी जो मीटिंग हुई उसमें, लेकिन उसमें एक कंसेंसस नहीं बन पाया सभी जो MLA थे आम आदमी पार्टी के, इसलिए उस पर इन्होंने जो फाइनल जो फैसला है उसको तो अभी पेंडिंग रखा है। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर जो पंजाब के MLA हैं उनका यही मानना है कि हम इसको अलग से चलाएंगे और दिल्ली से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा।
ये थे हमारे सहयोगी अरविंद छाबड़ा। मशहूर पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी को 15 साल पुराने मानव तस्करी के एक मामले में पटियाला की एक जिला अदालत ने दोषी ठहराया है और 2 साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के थोड़ी ही देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। पटियाला से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
आज पटियाला की जिला अदालत ने पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी को 2003 के एक मानव तस्करी मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में माननीय कोर्ट ने मेहंदी को इस केस में जमानत भी दे दी है। मेहंदी और उनके भाई पर दोष है कि उन्होंने कई लोगों को अवैध रूप से विदेश ले जाने में मदद की और उसके एवज में उनसे पैसे लिए। साल 2003 में बख्शीश सिंह नाम के शख्स ने इस बाबत मेहंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बख्शीश सिंह के वकील गुरमेहर सिंह भसीन ने BBC को बताया,
इसमें इनके ट्रूप के साथ लोगों को बाहर भेजने के लिए अश्योरेंस देकर इनसे पैसे ले लिए गए, बख्शीश सिंह कंप्लेनेंट और इनके जो साथ और कंप्लेनेंट थे, और इनको ना तो इनके पैसे वापस किए और ना ही इनको अब्रॉड भेजा, बाहर भी नहीं भेजा। तो इस तरह से इनके खिलाफ चीटिंग का और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का केस रजिस्टर हुआ था 2003 में सदर थाने में, जिसका ट्रायल लंबा चला। काफी एविडेंस फाइल पे आने के बाद आज माननीय अदालत ने इनको सजा सुनाई है। जमानत देखो वो एक लीगल प्रोसेस है, तो उस लीगल प्रोसेस के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा।
और दूसरी तरफ मेहंदी का कहना था कि उन्हें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, हालांकि उनका कहना था कि वे बेकसूर हैं।
है तो रब देता जो हो रहा होता है। जो केस मेरे बड़े भाई शमशेर पे बनाया था वो 14 साल हो गए और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। अब वही थे एक मेन एक विक्टिम। अब केस ने जो बोला है, कोर्ट ने, अदालत ने बोला है कि अब हम जाएंगे सेशन कोर्ट है, अपील करेंगे, बाकी जो अदालत का फैसला हो तो फैसला होता ही है।
दलेर के वकील बलजिंदर सिंह का कहना था,
दो साल ते 1000 रुपया 420 120 बीच भी सेम रिन्यू की है, ते ओदे च असी बेल बॉन्ड सबमिट की कर दिता है, बेल ते रिलीज हो गए महंदी साहब, ते डेफिनेटली असी अपील करांगे कि इस जिनी जजमेंट हुण मैं देख सके बहुत खामियां ने, ते मैं समझदा और उम्मीद करदा है कि सानू सेशन कोर्ट तो इंसाफ मिलेगा, जमानत हो गई है जी।
15 वर्ष से चल रही इस केस के दौरान दलेर के भाई शमशेर सिंह मेहंदी की तो मृत्यु हो चुकी है। मानव तस्करी के इस केस में लोअर कोर्ट में फैसला आते आते 15 वर्ष लग गए। अब यह केस सेशन कोर्ट में चलेगा। पटियाला से बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन।
बीबीसी इंडिया बोल।
बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ अपने घर की सीट नहीं बचा पाए। क्या गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार से उनका कद छोटा हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदारी से बच सकते हैं? रखिए अपनी राय इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 17 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके और भारत के रक्षा सचिव पद से रिटायर हुए योगेंद्र नारायण की हाल ही में आत्मकथा प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है बॉर्न टू सर्व, पावर गेम्स इन ब्यूरोक्रेसी। इस किताब में उन्होंने अपने 40 साल के आईएएस कार्यकाल के अनुभवों को साझा किया है। बाबरी मस्जिद ध्वंस घटना के समय योगेंद्र नारायण मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रधान सचिव थे। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं योगेंद्र नारायण के घटनाओं से भरे आईएएस करियर के दिलचस्प पहलुओं पर।
किसी आईएएस अधिकारी की सफलता का एक मापदंड ये भी है कि दो अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारों में उसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाए। रक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए उत्तर प्रदेश काडर के 1965 बैच के योगेंद्र नारायण को राजनीतिक रूप से धुर विरोधी रहे उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्रियों नारायण दत्त तिवारी और कल्याण सिंह के प्रधान सचिव बनने का श्रेय हासिल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए में टॉप करने वाले योगेंद्र नारायण की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के ही बॉयज हाई स्कूल में हुई थी, जहाँ मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन उनसे 1 साल सीनियर थे।
अमिताभ बच्चन जी हमारे 1 साल सीनियर थे, पर मैं बहुत गौरव से कहता हूँ कि उनके साथ भी मैंने एक्टिंग किया है। जब हम लोग क्लास 3rd में थे, वो क्लास 4th में थे, एक छोटा स्टेज होता था स्कूल का, तो उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। उसमें उनकी फोटोग्राफ मेरे पास है और उस समय से ही वो बड़े अच्छे एक्टर माने जाते थे और उनको 1 साल बेस्ट एक्टर प्राइज मिला था। फिर मुझे कुछ साल बाद मुझे भी मिला। पहले हम लोगों का रिवाज था कि जो सीनियर क्लासेस के हैं वो लोग बेचते थे अपनी 50% प्राइस पर, तो उस समय तो और आने और रुपए और पैसे चलते थे, तो मुझे याद है सब किताबें उनकी खरीद कर फिर टोटल किया जाता था कि 5 रुपए 4 आने इतने पाई करके। तो मैं उनके घर गया था, सब उनकी जो अच्छी किताबें थी मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी।
आईएएस में चुने जाने के बाद योगेंद्र नारायण को शुरू में अलीगढ़, कानपुर और मुजफ्फरनगर में तैनात किया गया। 1974 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ जिला मजिस्ट्रेट का पुरस्कार दिया गया। उनके बैचमेट और मारुति उद्योग के प्रबंध निदेशक रहे जगदीश खट्टर बताते हैं।
योगेंद्र नारायण और हमने आईएएस इकट्ठा ज्वाइन किया था 1965 में। फर्क ये था कि वो अलाहाबाद से आए थे और हम दिल्ली से गए थे, लेकिन मसूरी में हमारी मुलाकात हुई। हमारे बैच में ये सबसे पॉपुलर ऑफिसर माने जाते हैं। क्राइसिस में इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है। अगर मुझे याद आता है तो पहले ये मुजफ्फरनगर में डीएम बने थे, तो काफी इन्होंने अच्छा काम किया और पॉपुलर रहे। वहां से हट गए और कुछ समय के बाद आई थिंक इमरजेंसी में था, वहां पे कुछ राइड्स हुए, तो सरकार ने फिर इनको वहां भेजा। यानी ये दिखाते हैं कि इनकी क्या रेपुटेशन थी कि क्राइसिस है तो उसमें जाएंगे। मेरे ख्याल में इनको हेलीकॉप्टर से या जैसे भी है वहां ले गए, इनको चार्ज दिया और कुछ ही दिनों में वहां पे शांति इन्होंने कर दी। इन्होंने सारे कैरियर में काफी सेंसिटिव जॉब्स किए हैं। सेक्रेटरी रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, और कहा यह जाता है कि पहले जो भी डिफेंस सेक्रेटरी रहे थे उनका सर्विसेज चीफ के साथ कुछ ना कुछ टेंशन होती थी या क्या है, कुछ लोग कहते हैं स्वाभाविक है, लेकिन योगेंद्र नारायण साहब के साथ नहीं था और इनको सब सर्विस चीफ ने इकट्ठा फेयरवेल दिया।
उत्तर प्रदेश में कुछ समय बिताने के बाद योगेंद्र नारायण को भूतल यातायात और जहाजरानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर तैनात किया गया। वहां उनके सामने एक विचित्र समस्या उठ खड़ी हुई जब राजीव गांधी ने आदेश दिया कि भूमि से घिरा देश होने के कारण कोलकाता बंदरगाह पर नेपाल को मिलने वाली सारी सुविधाएं वापस ले ली जाए। कारण था नेपाल नरेश का राजीव गांधी के प्रति व्यवहार, जिसे उन्होंने बहुत नापसंद किया था।
हम लोग पास इंस्ट्रक्शंस आए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, ये जो कलकत्ता पोर्ट में एक बर्थ रिजर्व होती है कि जितने भी बाहर से माल आता है, शिपिंग से आता है नेपाल के लिए, वो एक बर्थ उनके लिए रिजर्वड है कि इसका ज़रा आप देखिए किस तरह उनको एक मैसेज जाना चाहिए नेपाल को कि इस तरह मिसबिहेव ना करे हमारे देश के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ। तो ये इंस्ट्रक्शंस आए कि इस पोर्ट को क्लोज किया जाए। जब आदेश मिले तो हम लोगों ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन से बात की, उन्होंने कहा साहब ये तो ठीक नहीं होगा और मुझे लिखित आदेश चाहिए। अब मैंने अपने सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने कहा लिखित कैसे भेजें ये आदेश, ये तो एक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिसी मैटर है जिससे कि हम लोग थोड़ा दबाव डाल सकें नेपाल के ऊपर। फिर मैंने उनसे बात की चेयरमैन कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, तो मैंने कहा देखिए एक सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ, मैंने कहा मैं आपको लिखित आदेश भेजूंगा एज जॉइंट सेक्रेटरी कि आप पर्टिकुलर पोर्ट को क्लोज करिए कुछ दिन के लिए, और आप जो है इसको आप अपने अलमायरा में रखिएगा, अगर कभी आपसे सवाल किया जाए उसमें आप दिखा सकते हैं इसको, पर जब तक ना हो आप रखे रहिए। तो फिर उन्होंने ये स्ट्रैटेजी निभाई गई कि वो वहाँ कलकत्ता पोर्ट में सिल्टिंग बहुत होती है, उन्होंने बनाया एक पॉलिसी कि सिल्टिंग बहुत हो गई इस बर्थ पर, इसको क्लोज कर दिया जाए। अब उधर से नेपाल के एम्बेसडर आते थे, हम लोग से मिलते थे कि हमें खुलवाइए, जल्दी खुलवाइए। मैंने कहा भाई सिल्टिंग हो रही है तो अब हम क्या खुलवाएं इसको, वो भी समझ गए। फिर उन्होंने भी अपने सरकार से बात की तो 15 दिन बाद वो खोला गया।
6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो योगेंद्र नारायण कल्याण सिंह के प्रधान सचिव थे और उनके साथ लखनऊ के उनके निवास में बैठे हुए सारे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। योगेंद्र नारायण बताते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिर गया तो उत्तर प्रदेश के DGP SM त्रिपाठी ने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे कल्याण सिंह ने देने से इनकार कर दिया था।
मुख्यमंत्री आवास में 3 मंत्री लोग बैठे थे मुख्यमंत्री जी के साथ और टीवी देख रहे थे। अचानक हम लोगों ने टीवी में देखा कि लोग चढ़ रहे हैं, केंद्रीय फोर्सेस तो लगी हुई थी, पर उस बीच में क्या किया था कर सेवकों ने कि जहां स्ट्रक्चर था, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर और केंद्रीय बल था जहां, उसके बीच में उन्होंने घेरा बांध लिया था। तो जब ये कर सेवक चढ़े ऊपर तो केंद्रीय बल जो था पुलिस फोर्स वो आउटर सर्कल में थी, इनर सर्कल में कर सेवकों ने अपना एक बहुत भारी झमघट तैयार कर लिया था और कुछ लोग चढ़ गए उसमें से। तब DGP आए मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने फायरिंग के लिए परमिशन मांगी तो कल्याण सिंह ने कहा कि आप क्या कुछ और कर सकते हैं लाठी चार्ज टियर गैस शेलिंग करके। कहेंगे नहीं साहब भीड़ इतनी उग्र हो गई है कि हमें फायरिंग करनी पड़ेगी। तो कल्याण सिंह ने पूछा कि फायरिंग में क्या बहुत लोग मरेंगे? कहेंगे हाँ साहब बहुत लोग मरेंगे और हो भी सकता है कि जो कर सेवक हैं वो अटैक भी करें पुलिस फोर्स पर, तो काफ़ी बड़ा मैसेकेयर भी हो सकता है। तो कल्याण सिंह ने सोच समझ के कहा कि मैं नहीं ऑर्डर करूँगा, मैं परमिशन आपको नहीं देता फायरिंग के लिए। और ये भी कहा DGP साहब से और होम सेक्रेटरी से कि आप फाइल पर मेरे ऑर्डर्स ले लीजिए कि आपका प्रस्ताव है कि फायरिंग आप करना चाहते हैं और मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूँ।
किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का प्रपालन किया है और मैं इस बात के एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? NIC की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी निभाने के बाद योगेंद्र नारायण को केंद्र में रक्षा सचिव बनाया गया। योगेंद्र नारायण बताते हैं कि एक बार उन्हें तत्कालीन रक्षा मंत्री जसवंत सिंह के साथ मॉस्को जाने का मौका मिला, जहां राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात से पहले क्रेमलिन के मुख्य द्वार पर उन्हें रोक दिया गया क्योंकि वो अपना परिचय पत्र साथ नहीं लाए थे।
हम लोग के पूरे डेलीगेशन के मेंबर्स को एक वो दिया था आइडेंटिटी कार्ड जिससे कि हम लोग एंटर कर सकते थे, अंदर जा सकते थे क्रेमलिन में। हुआ ये कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जसवंत सिंह जी अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गए थे,
अब क्रेमलिन में तो वो जो मोटे ताजे लंबे आदमी खड़े रहते हैं सिक्योरिटी, उन्होंने का आइडेंटिटी कार्ड अब उनके पास नहीं था तो उनको रोक लिया गया। अब जसवंत सिंह जी तो अपने आप ही आर्मी ऑफिसर रह सकते थे, तो बड़े नाराज हुए कि हाउ कैन अ सबल्टन स्टॉप मी। तो फिर हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी कि व्हाई डोंट यू अलाउ हिम, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी हैव अ मीटिंग विद प्रेसिडेंट पुतिन। तो वहाँ के जो बाकी गार्ड्स थे और जो सीनियर लोग थे, फिर वो रश करके आए तो हमारे एम्बेसडर साहब ने समझाया कि साहब ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गए, पर हम लोगों के पास सबके पास है, मैं एम्बेसडर हूँ सब। तो फिर हम लोग को परमिशन मिला जाने का, पर हाँ उनको अच्छा नहीं लगा कि उनको रोका गया।
योगेंद्र नारायण ने दो रक्षा मंत्रियों जसवंत सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया। वो बताते हैं कि दोनों बहुत काबिल रक्षा मंत्री थे, लेकिन दोनों के काम करने के ढंग में बहुत फर्क था।
जॉर्ज फर्नांडिस तो बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड के थे, सिंपल आदमी थे। उनका थर्ड फ्लोर में ऑफिस था, वो रोज सीढ़ियों से चढ़ते थे, सीढ़ियों से उतरते थे, हम लोग सब लिफ्ट से जाते थे। घर में अगर लंच देते थे तो बहुत ही साधारण खाना, और अपने बेडरूम में पास में डाइनिंग हॉल था उनका, और बेडरूम में हम लोग देखते थे कि वो अपना जो पजामा कुर्ता है धोकर तकिए के नीचे रखते थे आयरनिंग के लिए, क्योंकि बेसिकली वो लेबर लीडर थे, एक बड़े जेन्युइन लेबर लीडर। वो आए मेरे पास आईबी वाले भी कि साहब आप इनको पर्सुएट करिए कि सिक्योरिटी ले लिया करें। ये क्या करते थे, बिना सिक्योरिटी के पैदल आते थे अपने घर से ऑफिस, और कहते थे मैं कार में भी नहीं आऊँगा। तो बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने ये पर्सुएट किया कि एटलीस्ट कार में आइए, पर कहने लगे सिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए हमारे चारों तरफ। जो जसवंत सिंह थे बहुत ही केपेबल, बहुत ही वेल रेड आदमी, और डिफेंस और सिक्योरिटी पर इतना माहिर डिफेंस मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, पर वो अपने एज ए मिलिट्री ऑफिसर उस स्टाइल में रहते थे, सख्त डिसिप्लिन्ड और शॉर्ट स्पीचेस, और अपना जो डिसीशन लेना है दे दिया, और एक बुशर्ट अपनी हाफ रोल्ड स्लीव्स हरदम पहनते थे। और जब मैंने देखा उनको पार्लियामेंट में जब मैं सेक्रेटरी जनरल बना कि वो कुछ अपना हाथ हरदम अंदर रखते थे अपने बुशर्ट के अंदर, किसी ने बताया कि वो देवी जी के भक्त हैं और अपने छूते रहते हैं।
रक्षा सचिव के पद से रिटायर होने के बाद योगेंद्र नारायण को राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, जहां उन्होंने सदन की कार्रवाई को बहुत नजदीक और ध्यान से देखा। मैंने उनसे पूछा कि संसद में सांसदों के अपरिपक्व व्यवहार के पीछे आप क्या कारण मानते हैं।
इंडिविजुअल एमपी अपने आप नहीं करता, ये पार्टी बहुत स्ट्रांग हो गई है और पार्टी डायरेक्टिव्स फॉलो करता है। अगर लेजिस्लेटिव पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें हंगामा करना है या स्पीकर का टेबल के चारों तरफ जाना है, तो पार्टी डिसाइड करती है, नॉट द इंडिविजुअल एमएलए। दूसरा ये है कि जब गवर्नमेंट इनकी मांगे स्वीकार नहीं करती, लेट अस से कि वो चाह रहे हैं कि डिस्कशन ऑन अ सर्टेन टॉपिक, और गवर्नमेंट असहमत है कि हम डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे इस पर, या हम करेंगे तो विदाउट वोटिंग करेंगे, तो उसमें भी ये हो जाता है कि वो हंगामा हो जाता है। और ज़्यादातर अब ये होने लगा जो पहले नहीं होता था कि क्वेश्चन आवर ही नहीं होने देते। देखिए क्वेश्चन आवर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ दी एग्जेक्टिव टू दी लेजिस्लेचर। अब क्वेश्चन आवर भी बॉयकॉट होने लगा है, हंगामा होने लगा है, क्वेश्चन आवर एडजर्न होने लगा है। तीसरा इसका कारण ये भी होता है कि आपने कोई जैसे आप बिल लाए पास करने के लिए, अब वो ऑपोजिशन चाह रहा है कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दीजिए, लेट देम डिसाइड कि सही है या नहीं, और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमें तो तुरंत ये बिल पास करना है, तो इसमें फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो मिनिस्टर होता है ना, ही हैज़ अ वेरी एक्टिव रोल टू प्ले, और एक तरह से उन्हीं की जिम्मेदारी है कि हाउस रन करें, प्लस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। फीलिंग ये भी आ जाती है कभी कभी ऑपोजिशन में कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बायस्ड हो गया है, तब भी बड़ा मुश्किल होता है हाउस चलने।
यूके नारायण की आत्मकथा बॉर्न टू सर्व पावर गेम इन ब्यूरोक्रेसी के अलावा उनकी कविताओं की एक किताब भी प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा उनको थिएटर और शास्त्रीय संगीत का भी बहुत शौक है।
मैं एक तो पोएट्री लिखता हूँ, मेरी एक किताब भी पब्लिश हुई है क्लाउड्स एंड अदर पोएम्स, दूसरी किताब की भी सामग्री तैयार हो गई है। इसके अलावा मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था यूनिवर्सिटी तक, आई यूज्ड टू एक्ट, एंड अब मुझे बहुत शौक है प्लेज देखने का। तीसरा मुझे क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। फिल्म्स का मुझे शौक है, पर उससे ज्यादा फिल्म सॉन्ग्स का शौक है। मैंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद रखा है, उसका नाम है कारवा, उसमें 5,000 प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, वो मैं सुबह रोज लगा देता हूँ।
तो दो एक सॉन्ग का जिक्र करें जो आपको मंत्रमुग्ध करते हो, कहीं भी आप सुने तो एकदम आप ठिटक जाएं।
जीवन के सफर में राही, मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें।
जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।